हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठम अध्याय नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद। श्लोक नंबर 11, 12 एंड 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो हृदय से समस्त भौतिक मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग के श्री चरणों में मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद चतुर्थाध्याय श्लोक संख्या 11। कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, सीतांजन पादांस्तंत्र सीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेत खर्वट वाटीश्च वनान्युपवनानि च। सीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेत खर्वट वाटीश्च वननान्यु पवानि च। सीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेत खर्वट वाटीश्च वनान्यु पवनानि च। सीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेत खर्वट वाटीश्च वननान्यु पवानि च स्वीताञ्जन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् कीटखर्वटवाटीश्च वननान्यु पवानि च स्वीताञ्जन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् कीटखर्वटवाटीश्च पुनान्यु पवनानि च शब्दकात् सीतान सीतान मतलब अत्यंत ही समृद्ध जनपदान यानी जनपद तत्र वहां पुर नगर ग्राम गांव व्रज बड़े बड़े खेत आकारान यानी खाने खेत कृषि योग्य खेत खरवट घाटियां वाटी यानी पुष्प वाटिकाएं च तथा वनानी यानी जंगल उपवनानी यानी पौधघर च तथा अनुवाद प्रस्थान करने के बाद मैंने अनेक समृद्ध जनपदों नगरों गांवों पशुओं क्षेत्रों खानों खेतों घाटियों पुष्पवाटिकाओं और पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि खनन फार्मिंग उद्योग उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावृतित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे बालक थे आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों खानों तथा उद्योगों से होकर गुजर रहे थे वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। श्लोक नंबर 12 मेरे साथ पढ़िए। चित्र धातु विचित्राधीन इभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरसीवितां चित्रस्वनय पत्ररथै विभ्रमा ब्रह्मणश्रया चित्र धातु विचित्राधीन इभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिवजलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वनय पत्ररथै विभ्रमत ब्रह्मणश्रय चित्र धातुर्विचित्रादीन इभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वनय पत्ररथै विभ्रमत ब्रह्मणश्रिया चित्र धातु विचित्राधीन इभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वने पत्ररथै विभ्रमद्ब्रह्मणश्रिया चित्रदातु विचित्रादीन इभभग्न भुजत्रुमान जलाशयान शिवजलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वनै पत्ररथै विभ्रमद्ब्रह्मणश्रिया चित्रधातु विचित्राधीन इभभग्न भुजत्रुमान जलाशयान शिवजलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वनै पत्ररथै विभ्रमद्ब्रह्मणश्रिया चित्रधातु विचित्राद्रीन इभभग्न भुजत्रुमान जलाशयान शिवजलान नलिनी सुरसीविता चित्रस्वनै पत्ररथै ब्रह्मणश्रिया
शब्दों पर
चित्रधातु विचित्रादि चित्रधातु मतलब मूल्यवान खनिजों यथा खानों चांदी तथा तांबा वगैरह की जो खाने होती है ना वो विचित्रादि यानी विविध धातु पूर्ण उद्रीन यानी पहाड़ियां एभव भग्न यानी विशाल विशाल काय हाथियों द्वारा तोड़ी गई भुज यानी शाखाएं द्रुमान वृक्ष जलशयान शिव अर्थात स्वास्थ्य वर्धक जलान यानी जलाशय नलिनी यानी कमल के फूल सुरसेविता अर्थात स्वर्ग के निवासियों द्वारा जिसकी कामना की जाए चित्र स्वनय यानी हृदय ग्राही पत्र रथै अर्थात पक्षियों द्वारा विभ्रमत मदांद भ्रमण श्रेय यानी भवनों से अलंकृत अनुवाद में सोना चांदी तथा तांबों तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से पूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभंगों को पार करता रहा जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांत भंवरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। श्लोक नंबर 13 कृपा करके मेरे साथ उच्चारण कीजिए। नल वेणु शरस्तंभ कुशकी जग गहवरम एक एवाति या तो हम अत्राक्ष विपिनम महत् गोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूक शिवांचिरं नलवेणु शरस्तंभ कुशकी चकगहवरं एक एवा तियो तिया तो हम अत्राक्षं विपिनं महत् गोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूक शिवाचिरं नलवेणु शरस्तंभ कुशकी चक गहवरं एक एवातियो एक एवातिया तो हम अत्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूक शिवाचिरं नलवेणु शरस्तंभ कुशकी चक गहवरं एक एवा तिया तो हम अत्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूक शिवाचिरं नलवेणु शरस्तंभ कुशकी चकगहवरं एक एव तिया तोहम् अत्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरं नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचकगह्वरम् एक एव तिया तोहम् अत्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्।
शब्दों का अर्थ, नल वेणु शिरस्तंभ, नल यानी नरकट, वेणु भास, शिर सर्पत, स्तंभ अर्थात वे परिपूर्ण, कुश नुकीली घास कुश, और कीचक यानी अपत्रण, गहवरम गुफाएं, एक अकेले एव केवल, अतियात दुर्गम अहम में, अद्रक्षम अर्थात देखा, विपिनम गहन जंगल, महत विशाल घोरम भयावना, प्रतिभय आकारम अर्थात भयानक, व्याल सर्प, उल्लुक उल्लू, शिव सियार, और अजरिम अर्थात मैदान। अनुवाद, तब मैं अनेक जंगलों में से होकर गया जो नरकटों, बांसों, सर्पों, कुशों, अपत्रणों तथा गहवरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत संघन अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावनी जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। अनुवाद, तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की शीला प्रभुपाद जी समझा रहे कि किसी भी प्रवृत्ति का आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा लोगों को ईश्वर के संदेश के प्रकाशित करें। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विचित्र सन्यासी भगवान श्री चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को चेतना प्रदान की। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है जो केवल गेरवा वस्त्र पहनकर अपना विज्ञापन करता है, वह मूल आदर्श सन्यासी नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता है, औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी कहलाना स्वीकार नहीं किया और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को ना बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की जाती है और जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन छोड़कर सन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्रजक आचार्यों का अनुकरण ना करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड़ गोस्वामियों जैसे आचार्यों द्वारा छोड़े गए पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 11, 12 और 13। जब वेद व्यास जी ने नारद मुनि से यह पूछा कि उन महामुनियों के जाने के बाद आपने क्या किया, आपने अपना जीवन कैसे बिताया और फिर शरीर को कैसे त्यागा, तो नारद मुनि ने उनके जाने के बाद की घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया कि जब वो चले गए तो मेरा मन एक क्षण भी भगवान के स्मरण से हटता नहीं था। मेरा हृदय मेरा एक ही इच्छा करता था, मैं सदैव भगवान के नाम के नाम में अपना समय बिताऊं और वही जो उन्होंने मुझे आदेश दिए थे मैं उनका पालन करना चाहता था। परंतु मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह करती थी क्योंकि मैं इकलौता पुत्र था और उसका एकमात्र आसरा था, और वो भी मेरी माता बहुत बूढ़ी थी और बुद्धिमान भी नहीं थी, स्त्री थी और दासी थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा बहुत अच्छे से लालन पालन करे, मगर उसके पास ऐसी सुविधा भी नहीं थी। एक बार जब वो गाय को धो रही थी तो एक सर्प ने उसके पैर पे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने समझा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, अब मैं अपनी माता का कल्याण कर सकूंगा, क्योंकि जब एक भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है तभी वो अपने माता पिता अपने समस्त कुल जितना भी पहले के 21 पीढ़ियाँ और बाद की 21 पीढ़ियाँ शास्त्र कहता है एक भक्त की भक्ति करने से तर जाती हैं। तो फिर उसके बाद अब वो बालक जो कि केवल 5 साल का था बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, भौतिक सहारा कोई भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने शुद्ध भक्तों का संग किया था और भगवान के नाम को जप किया था, अब वो क्या करता उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे हमने पढ़ा कि श्लोक नंबर 10 में बताया, अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठम दिशम उत्तरम, उत्तर दिशा की ओर गया। वास्तव भक्तों ये उत्तर दिशा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं जो भी जाते हैं अपना घर त्याग कर, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे थे वो भी उत्तर दिशा की तरफ जा रहे थे, पीछे भी देखा नहीं, सारे भाई और पत्नी उनकी द्रौपदी सब साथ में जा रहे थे, तो जाते जाते उत्तर दिशा में ही जा रहे थे तो पहले द्रौपदी जो है वो गिर गई और उसके बाद नकुल, सहदेव, उसके बाद भीम, अर्जुन, ये सब एक एक करते गिरते गए, लेकिन उत्तर दिशा की ओर जाते यानी कि अब किसी में मोह नहीं रहना है, बस देखते ही नहीं थे, पीछे देखा ही नहीं। और जब एकदम एंड में जब पहुंचे तो देखा पीछे कोई भी नहीं था और सिर्फ एक कुत्ता उनके साथ था। तब वो ये तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी जैसे वो धृतराष्ट्र भी जब संन्यास लेकर आगे गए तो उत्तर दिशा की ओर उनको वेद व्यास जी ने जाने के लिए कहा, तो उत्तर दिशा की ओर अब नारद मुनि जा रहे हैं। तो उस दिशा की ओर जाते जाते वो क्या देखते हैं आज हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 11 में बताया, पीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान खेत खर्वट वाटीश वनान्यो पवनानी च। उसने बहुत सारी चीजें देखी क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वो छोटे से बच्चे थे और उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था, कभी उन्होंने दूसरे लोग को भी नहीं देखा था क्योंकि अपनी माता के साथ ही रहते थे। और अभी उन्होंने क्या देखा, शहर देखे, छोटे छोटे कस्बे देखे, गांव देखे, जानवरों के जो फार्म होते हैं, काने होती ना जिसमें से सब चीजें निकलती हैं, घाटियां और पुष्प वाटिकियां, जैसे वादियां, फूल जहाँ पर खिलते हैं, फूलों के बाग जो पुष्प वाटिकाएं होती हैं, और उसके पौधशालाओं यानी कि उस जहाँ पर पौधे और दरख्त वगैरह होते हैं, और प्राकृतिक जंगल जो होते हैं ना, कुदरती जंगल, वो सब वो देखते देखते जा रहे थे। मतलब अब वो इतने छोटे से बालक हैं लेकिन उन पर उन साधु संघ की के ना जो उन्होंने संग किया था उनकी सत्संग का इतना
प्रभाव पड़ा कि इतनी सारी, देखो अभी छोटे बच्चे होते हैं, मार्केट में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं, तो कितना उनकी ओर आकर्षित होते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए। परंतु साधु संघ का यह लाभ है कि हमें किसी भौतिक वस्तु की ओर आकर्षण होता ही नहीं है। ये सारी चीजें देख रहे थे वो इतने, और आगे भी हम पढ़ते हैं, सोने चांदी के दरख्त भी, सोने चांदी के खाने देखी उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे पर्वत से आगे, जैसे ये वाला श्लोक है वो भी देख लेते साथ में। चित्र धातु यानी कि मूल्यवान खनिज तथा सोने चांदी की, चांदी तांबा, ये बहुत सारे मूल्यवान, इतना सोना चांदी तांबा, विचित्र अर्थात विविधतापूर्ण उद्रीन पहाड़ियां, ऐसी सी पहाड़ियां थी जो वो जा रहे थे आगे, तो ऐसा लग रहा था कि कितनी मूल्यवान पहाड़ें, कहीं पर सोने चांदी हीरे सब लगे हुए थे। एभव अग्न यानी विशाल हाथियों के द्वारा तोड़े गए भुज यानी शाखाएं, ऐसी सी शाखाएं थी जो बड़े बड़े हाथियों ने ऐसा लगता है तोड़ के फेंक दी थी। द्रुमान यानी कि बहुत सारे वृक्ष इतने बड़े बड़े थे जो कि टूटे थे। जलाशयान शिव अर्थात स्वास्थ्य वर्धक, मतलब ऐसा मिनरल वाटर इसको बोलते हैं ना, बहुत ही स्वास्थ्य मिनरल्स वाला पानी उन्होंने देखा। नलिना का मतलब होता है कमल के फूल। और सूर्य सेविता यानी ऐसा लगता था कि जो स्वर्ग के देवता है ना, ऐसा सुंदर वातावरण था वहां पर, तो स्वर्ग के जो देवता है ना वो भी वहां पर रहने की ख्वाहिश करते हैं। चित्र स्वयनेह यानी हृदय को बहुत ही प्रसन्न करने वाला। पत्र रथ है यानी कि वहां पर परिंदे जो थे वो अलग अलग ना अपनी भाषा बोल रहे थे, बहुत ही सुंदर जगह थी। और ब्रह्मश्रेय, ब्रह्मश्रेय मतलब भंवरों से सजा होता, इतने सारे फूल थे कि उन पर भंवरे जो है वो ऐसे भंवर आवाजें कर रहे थे, इतने सुंदर सुंदर बाग थे। श्री प्रभुपाद ने बताया श्लोक नंबर 11 के तात्पर्य में कि ऐसा नहीं है कि आज के ही जो प्रेजेंट जो विज्ञान है उसी में ही तरक्की हो रही है। ये सनते, ये फार्म हाउस, ये खेत, ये कारखाने, ये सब इंसान जो भी कार्य आज कर रहा है, पहले भी ऐसे होते रहते थे। ऐसा नहीं है कि ये जो भौतिक तरक्की जो हो रही है वो सिर्फ इसी आज के दौर में हो रही है, करोड़ों सालों के पहले भी ऐसी सब होती थी। आज क्या होता है, जो दुनिया के जो वैज्ञानिक होते हैं, पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय व्यर्थ ही गंवाते हैं, यानी कि जो पहले कर चुके हैं उसी की रिसर्च करते हैं, खोदते हैं और फिर पता चलता है कि यहाँ पर ये हुआ करता था, यहाँ पर ये, तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें रिवाइव होती हैं। अभी तो बल्कि ऐसी ऐसी चीजें आई भी नहीं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि एरोप्लेन जो चलता है कितना बड़ा, आजकल हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा कारनामा है कि एरोप्लेन चल रहा है, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि मन की गति के विमान होते थे, बैठते थे और उसमें सीट्स भी इतनी नहीं होती थी। अगर 2 लोग बैठते थे तो 2 लोग के जितना हो जाता था, और अगर 200 लोग होते थे तो 200 लोग के जितना होता था, यानी कि जितनी आवश्यकता होती थी उतनी सीट्स हो जाती थी। और फिर मन की गति से चलता था, ना उसके अंदर इंजन होता था ना पेट्रोल डालना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भी ऐसे से सोने की, जैसे लंका रावण के जमाने में होती थी, और भगवान ने क्या किया द्वारिका को समुद्र के बीच में। तो ये सब भौतिक जितनी भी तरक्की है वो कभी भी भक्त को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, इसलिए नारद मुनि उनको देखे जा रहे थे, परंतु वो बालक थे छोटे से। परंतु भक्तों के संग से उन्हें ये पता चल गया था कि मेरा जीवन इन भौतिक वस्तुओं में उलझने के लिए नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा श्लोक नंबर 18 में, 5.18 में पढ़ा, तस्य वही तो प्रियति तको भी तो न लभ्यते भ्रमताम उपर्यत। ये मनुष्य जन्म हमें वह वस्तु प्राप्त करने के लिए मिला है जो कि ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में कभी भी भ्रमण करने से नहीं मिलता। तो ये भ्रमण तो कर रहे थे, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि प्रविजिक आचार्यों को भ्रमण करना चाहिए, लेकिन भ्रमण करके किसी वस्तु में अटकने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए कि वहां पर जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो भगवान से अभिज्ञ हैं, जिन्होंने भगवान की कथा के विषय में नहीं पढ़ा, तो उनको भगवान के नाम के विषय में बताने के लिए, ना कि उन वस्तुओं को की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को। हमारा जीवन का लक्ष्य ही भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति के लिए है। तो इन वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे नारद मुनि। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उन्होंने एक लम्हा भी अपना जाया नहीं किया। वो हालांकि शहरों में, गाँव में, कानों में, सनतों में से होकर गुजर रहे थे, परंतु फिर भी उनकी ओर आकर्षित न होते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते थे। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसा नहीं है कि भागवतम में पिछले समय की सारी घटनाओं के विषय में कहा गया है, इसमें केवल उन्हीं बातों के विषय में बताया गया है जो वाकई में आध्यात्मिक बातें हैं। और भी तो उस समय में ऐसे भौतिक विकास भी हुए हैं, भौतिक वाक्य भी हुए हैं, लेकिन उनके विषय में नहीं कहा गया। इस शास्त्र में केवल वही बातें बताई जाएंगी जिसके आपके जीवन का आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो उसी के अभी देखो नारद मुनि जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं, उनको भी वेद व्यास बता सकते थे, लेकिन उनको नहीं बता रहे जो वास्तविक आपके जीवन का लक्ष्य। इसीलिए कहा गया धर्म प्रोजित कय तवोत्र परमो, कि इस शास्त्र में आपके लिए कुछ कहतव नहीं है, सब कुछ आपको सिर्फ वही बताया जाएगा जो आपकी आत्मा के उद्धार के लिए है। तो नारद मुनि ने ये सब देखा परंतु किसी की ओर आकर्षित नहीं हुए। और उसके बाद सोने चांदी तांबे जैसे जो मादनियात खनिज होते हैं उनके खजानों से भरे हुए पहाड़ों को, चट्टानों को, जो कि वो कह रहे थे कि स्वर्ग के जो देवता है ना वो भी इनके लिए ख्वाहिश करते, ऐसी अच्छी अच्छी जगह उन्होंने देखी जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कमल के फूल थे और बहुत ही सुंदर पानी के तालाब थे और इतने सारे सुंदर फूल थे कि भंवरे उनके ऊपर भुनभुना रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे, परंतु किसी की ओर उनका आकर्षण नहीं जा रहा था। और उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ और देखा, नल वेणु शरत्तंभ कुशकीचक कावरम, के नाले और बांस और सरपत तम उससे पूर्ण मतलब परिपूर्ण थे, जो नोकीली घास वहां पर बिछी हुई थी और बहुत सारी गुफाएं देखी। ऐसी जगह से अब इतना खौफनाक रास्ता, अभी सुंदर सुंदर रास्ता खत्म हुआ और बहुत सारे खौफनाक रास्ता शुरू हो गया जहां पर से अकेले व्यक्ति का गुजरना बहुत ही भयानक लग रहा था। इतना ज्यादा गहन जंगल था, ऐसा लग रहा था हर क्षण पर एक विपिनम गहन जंगल में ऐसा लग रहा था विपत्ति आने वाली, क्योंकि गौरम प्रति भयाकारम यानी बहुत बहुत भयानक, व्याल व्यालो लूक शिवाजरम, व्याल मतलब बहुत बड़े बड़े जो सर्प होते ना कोबरा, और उल्लूक उल्लू शिवा यानी सैयार, और अजरम यानी बहुत बड़े बड़े मैदान में कहीं से सांप आ रहे थे, कहीं से उल्लू आ रहे थे, कहीं से भयानक व्याल अजगर आ रहे थे। तो बहुत ही खौफनाक जगह है वहां से जहां से मैं गुजर रहा था, वो सब आ रही थी, लेकिन कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं करती थी। वास्तव में भक्तों, जब हम वास्तविक ज्ञान को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं तो कोई चीज भौतिक हमें आकर्षित नहीं करती है और ना ही उनसे हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को अनुग्रहण कर लिया है, वो अपने आप को यह शरीर नहीं समझता। ये सारी वस्तुएं जो है वो शरीर को ही आकर्षित करती हैं, लेकिन जिसने आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर लिया है वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो चाहे कितने ही सोने चांदी के महल उसके सामने खड़े हो जाए, कितने ही खूबसूरत वस्तुएं उसके सामने आ जाए या कितनी ही भयंकर वस्तुएं आ जाए, उसे पता है मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है और ये वस्तुएं मुझे कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को तो कोई भी वस्तु कभी भी उसका नाश कर नहीं सकती। इसलिए भगवान बताते हैं 6.8 में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कि जिस ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है उस ज्ञान के कारण। कूटस्थो विजितेंद्रिया, और किस तरह से पता चलता है कि उसकी इंद्रियों को वो जीत लेता है, भौतिक वस्तुओं की ओर उसकी इंद्रियां आकर्षित नहीं होती हैं और ना ही इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा रह जाती है। युक्त इत्युच्यते योगी, इसको योगी कहते हैं, यानी कि उसने अपने जीवन को भगवान के साथ योग में लगा दिया है। समलोषाश्म कांचना, और उसके लिए चाहे लोहा हो चाहे कंकर हो चाहे सोना हो, सब बराबर है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल जो है वो संन्यास लेना वर्जित है, यानी कलयुग में पांच चीजें जैसे मैंने पहले भी बताई थी वर्जित है और उसमें संन्यास एक है। तो नारद मुनि जा रहे थे वहां पर, बहुत सारे जंगल में सर्प थे, भालू थे, शेर थे, हाथियों को उनको, और श्री प्रभुपाद जी बताए इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो इस संसार इस युग के सबसे बड़े विचित्र सन्यासी थे, वो भी जब दक्षिण यात्रा में गए थे तो जंगल से गुजरे थे ना, और उन जंगली जानवरों को भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि पर नचा दिया था। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए, यानी कि भले ही वो संन्यास नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी अपने खाली मनुष्य जीवन को ये जो सामाजिक संबंध है उसमें ही ना उलझ कर रह जाए, बल्कि अपने जीवन की वास्तविक जो सिद्धि है उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। संन्यास में करने खाली ये नहीं है कि आप गहरवा वस्त्र पहन लो और अपना वेश बदल लो और लोग इसलिए आपके है ना ये कहे इज्जत करे कि भाई इसने बहुत संन्यास ले लिया है, ये इतना महान हो गया, इसके लिए नहीं। वास्तव में क्या है कि हृदय में संन्यास होना चाहिए, त्यागी जीव होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं और भौतिक व्यक्तियों में इतना ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए और अनुसरण नहीं करना चाहिए इनका जो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया है। मैं उन्होंने शिला प्रभुपाद जी बोलते आप अगर संन्यास लेते भी हो, अगर कोई लेता है तो भी इस जीवन में क्या करना है, उसको भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की जाती है। इस युग में आपको और कोई कठिन तपस्या की का कहा ही नहीं गया है, बस जैसे भगवान ने बताते हैं आपको ज्यादा नहीं करना, आपको कम भी नहीं करना, आपके लिए इस युग में दो ही भक्ति का इतना सरल बता दिया कि श्रवण तथा कीर्तन, आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और ये जो शुद्ध शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, ये सब समस्त वेदों का निचोड़ है, इनको श्रवण करते रहना है और भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करना है, इसी की संस्तुति की जाती है। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे भी नारद या चैतन्य जैसे परिव्रजक आचार्यों का अनुकरण ना करके उनकी तरह जंगलों में भटकना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन की षट गोस्वामी जिसके आचरण द्वारा छोड़े गए पवित्र शास्त्रों का श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। यानी कि उन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को क्या सिखाया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उन्होंने ये नहीं किया था कि वो जा रहे थे जंगलों में भटक रहे थे, उन्होंने क्या किया था, एक जगह पे बैठ के शास्त्रों को लिखा था। और आज हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं पवित्र शास्त्रों को पढ़ना चाहिए ताकि हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगे। तो एक्स्ट्रा जो है ना, ये दिखावा नहीं करने की आवश्यकता है हमें जीवन में। अगर हम घर में भी बैठकर ये सब कर रहे हैं तो समझो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा सन्यासी वो है जिसने हृदय से भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर लिया है। तो हृदय में यदि भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, और भगवान के प्रति श्रवण और कीर्तन में यदि हमारा हृदय लग रहा है, तो सबसे बड़ा सन्यास यही है। और इसी से हमें भगवत प्राप्ति संभव है। श्रवण और कीर्तन इस युग का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या जानते हो क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है चार नियम को फॉलो करना। चार नियम को जो फॉलो करता है, और सबसे बड़ी साधना क्या है? अपनी 16 माला को अच्छे से अच्छे तरीके से करना, यही हमारी साधना है सबसे बड़ी। हमारे गुरु महाराज ने भगवत प्राप्ति को इतना सरल करके हमें दे दिया। हमें रोजाना सवेरे प्रभात साधना के समय कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्दी अपनी जपा कंप्लीट करनी चाहिए, और उसके बाद भागवतम को श्रवण और भगवत गीता को श्रवण करने के लिए समय निकालना चाहिए। बाकी अपने नियत कर्म करने चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ और जिंदगी को परफेक्ट बनाओ। इतना हार्ड करने की जरूरत नहीं है। आसान सी जिंदगी जिसमें श्रवण हो, कीर्तन हो, भगवान के पवित्र नाम का जप हो, और भौतिक वस्तुओं से मतलब इतना ज्यादा आकर्षण ना हो, यही बहुत ही आसानी से हमें भगवान को प्राप्त कराने में हमारी सहायता करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। श्री कृष्ण।